राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है गुड़गांव इस्कान केंद्र में। रविवार के दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम विश्व प्रसिद्ध और प्रमाणित भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। गत रविवार हमने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो। इस दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है सवाय भगवान के, बाकी सब इधर उधर डामाडोल होता रहता है। तो जिसकी बुद्धि कृष्ण के ऊपर केंद्रित हो उसको स्थिर बुद्धि बोलते हैं। उस व्यक्ति और साधारण संसार के व्यक्ति में क्या अंतर है, दिन और रात का अंतर है, ये श्लोक हमने गत रविवार को किया था। तो अब हमारे मन में ये आशा है कि हम स्थित प्रज्ञ कैसे बने, कि हमारा मन कृष्ण के ऊपर कैसे केंद्रित हो, हमारी बुद्धि कृष्ण में कैसे लगे। तो उसके लिए तीसरे अध्याय में आज हम 13वें श्लोक को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तीसरे अध्याय का नाम सुन लीजिए। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। एक शब्द होता है कर्म और एक होता है कर्मयोग, दोनों में दिन रात का अंतर है। कर्म और कर्मयोग दो शब्द हैं और दोनों में दिन रात का अंतर है। कर्म का मतलब कोई काम करना और काम करके कुछ कमाना और कुछ कमा के और फिर अपने इच्छा के अनुसार उसका भोग करना, इसको कहते हैं कर्म। और दुनिया सारी कर्म कर रही, दुनिया सारी कर्म कर गई, कोई भी इस दुनिया में बगैर कर्म करके करने के रह नहीं सकता। कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसा कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा और उस फल को हम भोगना चाहते हैं। इस दुनिया में प्रायः लोग उस फल को रात तक ही भोगना चाहते हैं, सुबह कमाया शाम को खाया सो गए, ये साधारण व्यक्ति इतना ही सोचते हैं। कुछ कहते नहीं नहीं, इतना अच्छा कर्म करना चाहिए कि उसका फल हम भोगे, फिर हमारे बच्चे भी भोगे, उनको भी भोगने के लिए मिलना चाहिए। फिर वो क्या है, कुछ अच्छा सा काम, अस्पताल धर्मशाला ऐसा कुछ काम करके जाते हैं कि पीछे लोग भी उसका फल भोगते रहते हैं। तो इस दुनिया के अंदर कुछ लोग अपने कर्म का फल केवल अपने व्यक्ति तक भोगना चाहते हैं, कुछ परिवार तक, कुछ कुछ पीढ़ियों तक भोगने का प्रयास करते हैं। कुछ कहते नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कर्म करें, इस दुनिया में क्या रखा है, स्वर्ग का भोग भोगना चाहिए। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कर्म करते हैं। और जो लोग विशेष रूप से धार्मिक कहे जाते हैं संसार में, उनका लक्ष्य अधिक से अधिक ऐसा कर्म करना जिससे हम स्वर्ग की प्राप्ति करें, इतना ही है। अधिकांश लोग इस दुनिया में जो है, पहले तो ये समझ लीजिए कि 100 में से 90 तो केवल पेट के लिए ही कर्म करते हैं कि दो टाइम की रोटी कैसे खानी, घर परिवार कैसे चलाना, इससे ज्यादा किसी के पास बुद्धि है ही नहीं। इसको बोलते हैं पशु बुद्धि। ये पशु की बुद्धि है कि दो टाइम का खाना है बस हो गया। इस स्तर पे बहुत से लोग दुनिया में, 90% लोग इस स्तर के ऊपर है, कुछ 5-7% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हम अकेले क्यों खाएं, चलो कुछ अपने बच्चों के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो कुछ धार्मिक चैरिटेबल, चैरिटेबल क्या कहेंगे, धर्माऊ कार्य करते हैं, अस्पताल बनाई, बावड़ी बनाई, धर्मशाला बनाई, ऐसा कार्य करते हैं। और ये जो ऐसा कार्य करते हैं इसमें से कुछ ऐसे चिन्ह कुछ लोग होते जरूर हैं जो कहते हैं नहीं नहीं इस दुनिया को छोड़ो, स्वर्ग के अंदर सुख भोगना है। दुनिया के अंदर जितने लोग रह रहे हैं और किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उन सब लोगों की सबसे ज्यादा संख्या क्या चाहती है? ईसाई सबसे एक बड़ी संख्या, ईसाई दुनिया में क्रिश्चियन वो क्या कहते हैं? हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, यही कहते हैं ना। दूसरा महामंडन, दूसरा बड़ा रिलीजन क्या कहते हैं? जन्नत में जाएंगे, यही कहते हैं ना। और हमारे पास ही प्राय मरने वाले वो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, यही कहेंगे ना। तो इसका मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जाएंगे, भगवान जाने कहां, कोई स्वर्ग में जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, कहां जाएंगे ये तो भगवान जाने, लेकिन कम से कम ये तो मानते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गवासी तो सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऐसे स्वर्गवासी नहीं कि एक शादी करके घर में आया, एक महीना छुट्टी से घर से लौटा, बोला तुम्हारी शादी हो गई, बोला हो गई, फिर तुम्हारा घर स्वर्ग स्वर्ग बन गया होगा, बोला हाँ घर स्वर्ग बन गया तो मैं तो स्वर्गवासी बन गया ना। घर जब स्वर्ग बन गया तो मैं तो स्वर्गवासी हुआ, और क्या हुआ। हरे कृष्ण। तो प्राय लोग स्वर्ग तक की, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं, लेकिन भगवत गीता कर्म की बात ही नहीं करती। कर्म का मतलब इस संसार में इंद्रिय तृप्ति का भोग करो, अथवा अपने परिवार और 3-7-5 पीढ़ियों के लिए भोग करो, अथवा स्वर्ग में जाके भोग करो, ये सारा कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन थोड़ा सा स्वर्ग तक जाने की इच्छा होती है तो उसके पीछे एक शब्द और लगता है, कर्मकांड। कर्मकांड क्योंकि वेद के अंदर है इसलिए कर्मकांड है। साधारण लोग तो कर्म ही करते, लेकिन अधिकांश धार्मिक लोग कर्मकांड करते हैं, लेकिन भगवत गीता में कर्म योग है। तो कर्म योग क्या, कर्म योग किसको कहेंगे पहले ये समझ में आना चाहिए, कर्म योग क्या है। योग शब्द आने से समझना चाहिए भगवान से जुड़ना, काम कोई भी करें लेकिन भगवान से हमारा उसमें पार्टनरशिप होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए काम में। अकेले हम भोगता नहीं हो लेकिन भगवान का भी उसमें कुछ भाग रखना चाहिए, ऐसा दिमाग में आ जाए तो उसको कर्म योग कहते हैं। तो योग शब्द का मतलब है भगवान से जुड़ा हुआ काम, क्यों कर्म है इसलिए। तो लोग जब कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब तुम करो कर्म, लेकिन कर्म योग नहीं कर रहे। 8वें अध्याय में अर्जुन ये प्रश्न पूछेगा, किम कर्म, कर्म किसको बोलते हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं, भूत भाव उद्भव कर कर्म संयतम, जो बार बार शरीर लेने के ऊपर बाध्य करे उसको कर्म बोलते हैं। कर्म वो है जो बार बार शरीर लेने के ऊपर हमको बाध्य करे, बंधन में डाले कि शरीर लेना ही पड़ेगा, कर्म उसको बोलते हैं। और कर्म योग किसको कहते हैं? कर्म करने के बाद भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो, वापस संसार में दोबारा शरीर नहीं लेना पड़े। तो दोनों में दिन रात का अंतर है, कर्म और कर्म योग में दिन रात का अंतर है। योग शब्द आने से भगवान, और योग कैसे होता है? योग यज्ञ से होता है। योग कैसे होता है इसलिए भगवद गीता के 3रे अध्याय में योग कैसे होता है, बोला योग यज्ञ से होता है। यज्ञ कौन है? भगवान विष्णु। यज्ञ किसको बोलते हैं? अधि यज्ञ अहम एव, ये भी 8वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछेगा, अधि यज्ञ कौन है, यज्ञ का अधिपति कौन है, कहां रहता है? तो भगवान कहते अधियज्ञ अहम, मैं अधियज्ञ हूं। और वेदों में यज्ञ भगवान विष्णु को कहते हैं। तो कर्म योग का मतलब भगवान विष्णु संबंधित कर्म, वो कैसे होगा? बोला यज्ञ के द्वारा होगा। तो ये 3 बातें समझ में आए, काम भगवान कृष्ण विष्णु से जुड़ा हुआ, और यज्ञ के रूप से किया गया, नहीं तो कर्म बंधन का कारण है, नहीं तो कर्म बंधन का कारण है, ये पहली बात समझ में आनी चाहिए। तो ये जो आज का श्लोक है, ये श्लोक शुरू होते हैं असल में ये शुरू होते हैं श्लोक, ये श्रृंखला शुरू होती है यहां। आठवां श्लोक में आप देखिए लिखा है, नियतम कुरु कर्म तुम। नियत का मतलब है जो वेदों ने बताया है वो काम करना चाहिए, अपने मनमानी से नहीं, जो काम आपका नियुक्त किया हुआ है वो काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि कोई भी बगैर काम करने के रह नहीं सकता इस दुनिया में, बगैर काम के तो कोई जी ही नहीं सकता, और फिर शरीर की यात्रा भी बगैर काम के पूरी नहीं होगी। शरीर जब तक है तो कुछ करना ही पड़ेगा, और तो फिर दूसरा प्रश्न उठा, तो शरीर के लिए काम करें? बोला नहीं, काम तो सबको करना पड़ेगा। ये बात तो ये बात सिद्ध हुई ना कि सब जिसको शरीर है उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो किसके लिए कर्म करें? तब नवे श्लोक में आएगा, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ के अर्थ काम करो, मतलब भगवान विष्णु के अर्थ काम करो। यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र काम शरीर के लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो तो पशु करते हैं। तुम मानव हो, तुम्हारी बुद्धि विकसित है, तुम्हारे को उत्तम जूनी मिली है, इसलिए तुम यज्ञ के लिए कर्म करो, शरीर के लिए मत कर्म करो। ये इसका अर्थ है। शरीर के लिए तो सभी काम करते हैं भाई, कुत्ता भी सुबह दरवाजे ऊपर जाता है, लाठी खाता है, फिर भी रोटी के लिए भागना तो पड़ता है ना, चुनटी पर भी चल के जाना पड़ता है ना कहीं खाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुंह तो हिलाना ही पड़ेगा ना। नहीं, गर्मी के मौसम में मई जून में राजस्थान में स्त्री ने चूल्हे के ऊपर रोटी पकाई आग में। अब तो आग में रोटी बना ला, गुड़गांव वालों को तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, आग जलाना ही नहीं आती हो। हमने तो अपने घर में अनुभव किया, गैस खत्म हो जाए तो आधी सब्जी पकी है तो आधी खाओ, पकी है तो दूसरी पकाओगे कहाँ, आता ही नहीं। गैस खत्म हो तो बाहर जाके खाना पड़ेगा, चूल्हा जलाना नहीं आता है बहुत से लोगों को। क्यों माता जी, लोग सवाए कुछ 50 के बड़ी उम्र की है, 45 के वो चूल्हा जला सकती है, बाकी को चूल्हा जलाना नहीं आता है, बहुत बड़ी समस्या है। उस मई जून की गर्मी में चूल्हे के ऊपर रोटी पकाए, फिर अपने पति को प्रेम से थाली में परोस के दे, फिर सीधे हाथ से खिलाए, उल्टे हाथ से पंखा भी झेले, पति को पसीना आ रहा है। पत्नी पूछती है, पकाई मैंने गर्मी में, खिला मैं रही हूं, पंखा मैं चला रही हूं, आपको पति देव पसीना क्यों? बोला चबा तेरा बाप रहा है। बोला चबा तेरा बाप रहा है तो चबाने तो फिर भी पड़ेगी ना, तो चबाने से भी पसीना तो आएगा ना, तो इतना धारा करे तो भी पसीना आता है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब भगवान ने वेद व्यास के रूप में आकर सारे शास्त्र हमारे को दे दिए, फिर प्रभुपाद को भेज के इसको हमारी भाषा में अनुवादित कर दिया संस्कृत में, फिर भक्तों को भेज के कहा कि जाओ ये कथा करो, बंदर का बनाओ, प्रसाद पकाओ, लेकिन एक घंटा डेढ़ बैठने में भी आपको पसीना आएगा, ये भी आसान काम नहीं है एक घंटा बैठ के सुनना, इतना करना भी मुश्किल है, सारी व्यवस्था पहले से की हुई है। तो ये बात कि कर्म किसके लिए करो, बोले शरीर के लिए तो पशु भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना, पहला आहार है ये तो पशु भी करते हैं, शरीर के लिए तो पशु भी करते हैं ना, तो हम पशु तो नहीं है ना, हम मानव है, उत्तम है, तो फिर हम शरीर के लिए नहीं करें तो किसके लिए करें? मानव अर्जुन ने पूछा, बोले यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। आपको तो यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, आपको यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। लोको अयम कर्म बंधन, नहीं तो इस लोक में कर्म के बंधन में फंस जाओगे। अयम का मतलब इस दुनिया के कर्म में बंधन में फंस जाओगे। तदर्थम, तदर्थम या कृष्ण कहते हैं, तद किसको कहते हैं? जो हृदय में यज्ञ पुरुष परमात्मा है ना, उसके लिए काम करना। ये थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं। तदर्थम कर्म कौनते है, उसके लिए कर्म करो। किसके लिए? जिसने इस दुनिया में आपको सब कुछ दिया है, उसके लिए कर्म करो। तो फिर क्या होगा? मुक्त संग, तो फिर तुम्हारा दुनिया के बंधन से मुक्ति हो जाएगी। और फिर दसवें श्लोक में तो कह दिया कि मैंने यज्ञ को आदमी के, जब आदमी बनाए, देवता बनाए, सह यज्ञ सृष्टा प्रवाच प्रजापति ही। सह यज्ञ, सह का मतलब साथ में, यज्ञ यज्ञ के साथ में देवताओं और मानव की उत्पत्ति की। और फिर मैंने आदेश दिया प्रजापति जो सबकी उत्पत्ति करने वाला है कि इस यज्ञ को करो, इष्ट काम धुक, ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। यज्ञ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, इष्ट काम धुक। इष्ट का मतलब इच्छा, काम इष्ट मतलब जो आप चाहते हो, काम का मतलब इच्छा। आपकी जो जो मनोवृत्ति है, इच्छा है मन की, वो सब पूरी करेगा कौन? यज्ञ। तो यज्ञ करो। और फिर क्योंकि भगवान सबके हैं तो साधारण बात कर रहे हैं पहले, फिर भक्तों की बात कर रहे हैं। पहले साधारण बात क्या कर रहे हैं? साधारण बात ये कर रहे हैं कि इस दुनिया में आपके पास, आप तो कुछ दुनिया में लाए नहीं थे ना अपने साथ, कोई इस दुनिया में कुछ भी साथ लाया नहीं है, कुछ साथ लेके तो जाएगा नहीं, ये तो सबको मालूम है। तो जो कुछ यहां मिल रहा है वो भगवान के द्वारा नियुक्त किए हुए देवता इस दुनिया की सब जरूरत पूरी कर रहे हैं। डिफरेंट जितने 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 विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, उनके देवता हैं। बरसात इंद्र दे देगा आपको, पृथ्वी देवी आपको अन्न उत्पादन कर देगी खाने के लिए, ऊपर से वर्षा हो जाएगी, हवा चाहिए, वायु देवा देखो, जो जो आपकी आवश्यकता है ये सब आपको देवता देते हैं। ये एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि आपको पहले कहां से मिल रहा है प्रकाश, कहां से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। तब तो दिन हो रहा है, जब दिन हो रहा है तब काम शुरू हो रहा है। तो सूर्य सुबह उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना चाहिए ना, ये बात ऐसे कर रहे हैं। तो सूर्य को सुबह उगते प्रणाम करना चाहिए ना कि हमको उठाया कम से कम, और तब से हम दिन का काम शुरू कर दिया तो सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम, ये पुरानी हमारी वेदों पद्धति है कि सूर्य क्या है वो तो दूसरा बाद में समझ में आएगा। सूर्य भगवान की आंख है, ये सूर्य और चंद्रमा भगवान की सीसी कैमरा है, ये कैमरा लगी हुई है, आंख है भगवान की, सबका फोटो निकालती है कौन क्या कर रहा है दिन में और रात में, और सब कंप्यूटराइज है ऊपर। ये यहां की दुनिया वाली कैमरा आप लगाते हैं हमारी फैक्ट्री में, एयरपोर्ट पे कौन कहां से आता है कहां जाता है पता लगता है, ये भगवान की दो कैमरा लगी हुई है बड़ी क्लोज सर्किट, ये टीवी है, सब समाचार उधर पहुंचता है कि ये साक्षी है, ये सूर्य चंद्रमा ये साक्षी है हमारे, हम जो दिन में क्या कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई व्रत लेता है भीष्म पिता, हे सूर्य हे चंद्रमा हे रात हे दिन हे देवता, आपको साक्षी मानकर मैं ये वचन करता हूं, तो इनको साक्षी बनाया जाता है। तो ये देवता सब हमको देते हैं। इसके बाद ये श्लोक आया, देवता आपको सब कुछ देते हैं। देवान भावितान ते देवा भाविंत परस्परम भाविंत श्रेय परम अवस्थित। देवता आपको देते हैं, आप देवताओं का धन्यवाद किया करो, ऐसे दोनों एक दूसरे की मदद करके सुखी रहो। इसका मतलब देवताओं को भी हमारी जरूरत है और हमको देवताओं की जरूरत है। परस्पर का मतलब ये है, अगर हम देवताओं को नहीं देंगे तो देवता बरसात नहीं करेंगे, बरसात नहीं करेंगे तो हम अन्न कहां से खाएंगे। तो हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब बारहवां श्लोक आया, जो जो आपको इस दुनिया में भोग के लिए चीज चाहिए वो यज्ञ के द्वारा मिलेगी। ये देवता किससे प्रसन्न होते हैं? कहते हैं देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न कैसे होते हैं? बोला देव यज्ञ से। बोला यज्ञ कैसे होता है? बोला मंत्र से। बोला मंत्र कौन बोलता है? बोला ब्राह्मण। तो बोला इसलिए ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण है समाज के अंदर, ब्राह्मण की इसमें इसलिए महत्वपूर्ण विशेष है क्योंकि वो जब मंत्र बोलेगा तब यज्ञ होगा, जब यज्ञ होगा तब देवता प्रसन्न होगा, जब देवता प्रसन्न होगा तब आपकी इच्छा पूरी होगी। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो कहा कि हम ब्राह्मण बनाने के लिए आए हैं। हमारी इस्कान संस्था, कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था का उद्देश्य है ब्राह्मण बनाना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है तो संसार की सारी समस्याओं का समाधान होगा। ब्राह्मण नहीं है तो फिर देवता प्रसन्न नहीं होंगे, यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण नहीं है तो यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ नहीं होगा तो संसार का काम ही नहीं चलेगा। तो ब्राह्मण बनाना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। ब्राह्मण बनाने का मतलब क्या? शिक्षा देकर। ब्राह्मण कैसे बनता है? शिक्षा से। कलौ संभव सर्वशूद्र संस्कारात भवति द्वेज। कलयुग में जो भी जन्म ले रहा है वो शूद्र है। क्यों? क्योंकि जन्म से पहले संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार। स्त्री और पुरुष गर्भ धारण करने से पहले पूजा करते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसा पुण्य आत्मा आए, उसके लिए पूजा होती है, उसको गर्भाधान संस्कार करता है। कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। इसलिए बगैर संस्कार का जो बच्चा है उसको शूद्र कहते हैं। तो जन्म जायते शूद्र, जन्म से सारे शूद्र हैं। संस्कारात भवति द्वेज, जब उसको संस्कार दिए जाएंगे उसको पवित्र किया जाएगा। संस्कार का अर्थ है पवित्र करना। तो संस्कार के द्वारा वो द्वेज बनेगा। द्वेज किसको बोलते हैं? द्वेज कहते हैं दूसरा जन्म जिसका हो। द्वेज वैसे द्वेज का अर्थ है दूसरा जन्म। दांतों को भी द्वेज बोलते हैं कि एक पहले दूध के दांत आते हैं फिर अन्न के दांत आते हैं, इसलिए दांत का नाम भी द्वेज है। और तीन वर्णों को द्वेज बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्वेज बोलते हैं। क्योंकि तीनों पहले ये गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। और गुरुकुल की एडमिशन कैसे होती थी मालूम है? वहां का एडमिशन कार्ड नहीं होता जैसे आजकल बच्चा आपका कार्ड ले जाओगे तो मिलेगा। माँ बाप बच्चे को लेने जाए और बच्चे का कार्ड नहीं हो तो ड्राइवर माँ बाप को बच्चा नहीं देता है। देखा? बच्चे को हमने एक कागज के टुकड़े के बदले में बेच दिया, वो दिखाओगे तो देगा, बस वाला नहीं तो नहीं देगा। हमने देखा है, बाप जाना है, माँ खड़ी है, बच्चा बोलता है मेरा बाप है, ड्राइवर बोला नहीं कार्ड दिखाओ। यहां की हालत देखो ना। और पहले एडमिशन किसको कहती थी? गुरुकुल में जाने से पहले यज्ञोपवीत होता था। ये जनोई जो डालना है ये गुरुकुल की एडमिशन का ये आइडेंटिटी कार्ड हुआ करता था। ये जला हुआ है इसका मतलब ये गुरु के पास शिक्षित हुआ है। पुराने जमाने में 8 साल का ब्राह्मण का, 10 साल का क्षत्रिय और 12 साल का वैश्य का बच्चा गुरुकुल में जाता था। नर्सरी नहीं हुआ करती, नर्सरी दादा दादी की गोद में हुआ करती थी। घर से मत निकाला करो दादा दादी को, नहीं तो तुम्हारी नर्सरी बाहर होगी। जब अपने आप समझदार बच्चा होता था तभी जाता था गुरु के पास, सेवा करनी होती थी गुरु के पास। तो उसको द्वेज बोलते थे जिसने जिसका जनेऊ संस्कार हुआ करता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था, वो द्वेज होता है। ब्राह्मण भी उसमें है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, तीनों का यह संस्कार हुआ करता था। तो यज्ञ करना मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, उसको कर्म योग बोलते हैं। तो कर्म योग की डेफिनेशन क्या हो गई? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, वो कर्म योग हो गई। और नहीं करोगे अगर उनके लिए कर्म तो क्या होगा? योगों कते स्तेन एव सह। अगर यज्ञ करके नहीं खाते हो तो आप क्या खाते हो? स्तेन एव। स्तेन कहते हैं चोर को। आपको दिया किसने खाने के लिए? एक आदमी प्रभुपाद से मिलने आया मायापुर में, बड़ा सेठ था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। प्रभुपाद ने पूछा तो आप क्या करते हैं? बोला हमारा बहुत बड़ा सीमेंट का फैक्ट्री है। बोला सीमेंट कैसे बनती है? बोला पहाड़ों से। बोला पहाड़ किसके हैं? बोले भगवान के। बोले भगवान का मान लेके बेचते हो तो तुम चोर हो। ऊपर ने सीधा ऐसे बोला भाई किसका, तुम सीमेंट किससे बनाते हो? पहाड़ों से। तो पहाड़ किसके? तुमने बनाए पहाड़? नहीं, किसके? भगवान ने बनाए। तो बोले तुम चोर हो? नहीं प्रभुपाद, हम तुमको दान देते हैं। बोलो तो फिर छोटा चोर हो, ज्यादा लेते हो थोड़ा देते हो, लेकिन चोरी तो चली गई। तो इसका कहने का अर्थ है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, ये किसी और की मदद से हमको मिली है, किसी और के सहयोग से हमको मिली है। और अगर हम उनका धन्यवाद नहीं करते हैं तो हम चोर हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम यज्ञ करके नहीं खाते हैं तो हम चोर हैं। प्रभुपाद ने लिखा है कई प्रवचनों में और वेदों का ये वाक्य है कि हर गृहस्थी को 5 यज्ञ रोज करने होते हैं। इसको बोलते हैं 5 सुनु। सुनु का मतलब मृत्यु, सुनु मारने को बोलते हैं। हमारे हाथों से रोज 5 हत्याएं, 5 प्रकार की हत्याएं होती। हर गृहस्थी को झाड़ू निकालते हुए बहुत से जीव मरते हैं, पानी छानते हुए, आग जलाते हुए, अन्न कूटते हुए। आप देखो धान में से निकालते हैं कि नहीं निकालते जीत, तो कई मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो इसको बोलते हैं 5 सुनु। ये 5 हत्याएं जाने अनजाने में हमसे प्रतिदिन होती है। इसलिए 5 यज्ञ हर गृहस्थी को करने होता था। हर गृहस्थी के घर में 5 यज्ञ पुराना नेम है। देव यज्ञ, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, ताकि हर समय के ऊपर बरसात आए, आधी तूफान नहीं आए, सब कुछ काम चले। ऋषि यज्ञ जो हमको शिक्षा देते हैं वेद की, ऋषियों के लिए शास्त्र पढ़ना ऋषि यज्ञ हुआ करता था। पितृ यज्ञ, माता पिता ने घर बना के दिया, जमीन जायदाद दिया तो पितरों का। अतिथि यज्ञ, कोई मेहमान आ जाए तो उसको देखभाल करते थे। और फिर भूत यज्ञ, जा दूसरे प्राणियों के लिए, चूंटियों के लिए जाके अन्न फेंकते आते थे, पक्षियों को अन्न देते थे, गाय के लिए पहली रोटी देते थे, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखते थे घर में, थोड़ा अन्न के अंदर। पुरानी माता जो कुमारों में अभी आग ही नहीं है, आग जलने में पहले घी आटा ऐसे आग में डालते थे, वो यज्ञ हो गया, सो आग करके फिर बनाते थे। अब तो चूल्हे में डालेंगे तो हर दौर में सफाई करने वाले को बुलाना पड़ेगा, गैस वाले को। और ये भी नियम हुआ करता था कि हर घर में किसी अतिथि को भोजन करा के फिर खाना चाहिए। एक व्यक्ति का भोजन जितना कम से कम खाता है इतना किसी को खिला के फिर खाना चाहिए। एक शादी हुई किसी की, प्रभुपाद से पूछा हमारा गृहस्थ का धर्म क्या है। प्रभुपाद ने कहा रोज दरवाजे के ऊपर खड़े होकर कहना कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा है तो उसको खिला के बाद में खाना। उसको सीधा ऐसा जवाब दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम एक व्यक्ति का भोजन जितना किसी को रोज हर गृहस्थी को देना चाहिए। हमने कहा बॉम्बे में ये बात कही कि दरवाजे के ऊपर खड़े होकर कहना कोई भूखा तो नहीं है, तो उसने बोला पहले तो हमें 11th फ्लोर से कैसे ऊपर से आवाज दें कि भैया कोई भूखा तो नहीं है, और उसके बाद अगर कहें भूखा तो सारा आधा बम्बई इकट्ठा हो जाएगा, कहां से खिलाए। ये समस्या हो गई। इसका समाधान हमने बोला ये कि एक आदमी के खाने जितना रोज अलग निकाल के रख दिया करो, महीने के बाद जहां आपका दिल चाहे वहां वो सामग्री दे के आओ, जहां भगवान को भोग लगता है, भक्तों का प्रसाद होता है, अथवा किसी गरीब को किसी कहीं भी ऐसा अन्न क्षेत्र चलता है वहां जाके दे के आना चाहिए। इतना ये नियम बनाना चाहिए कि एक व्यक्ति को जितना खाना आवश्यक है उतना महीने में कहीं एक स्थान पे जाके देकर आना चाहिए। ये नियम बनाना चाहिए। जैसे मानो कि आप सब लोग यहां आ रहे हैं, 100 लोग यहां आ रहे हैं, एक आदमी का 100 लोग महीने में यहां मानो के अन्न पहुंचा दिया तो यहां का काम अपने आप चलेगा कि नहीं चलेगा? कितने साधु यहां आए, खाएं, जाएं, आप लोग खाएं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, और यज्ञ भी हो गया और प्रचार भी हो गया। बहुत आसान सा काम है, लेकिन ये करना चाहिए हमको। ये दूसरों के प्रचार के लिए नहीं, हमारे लिए, ये हमारे लिए है। प्रचार बाद में करो, पहले अपने आचरण में लाएंगे तब दूसरों के पास होगा। अभी भी आप नाक द्वारा में कभी जाएंगे तो बाहर सब्जी वाला बैठा है, बाहर दूध वाला बैठा है, आप लो और भंडारे में दो और वो भगवान को भोग लगेगा। लोग लेके देते हैं उधर ही और वो भगवान को भोग लगता है, फिर प्रसाद के रूप में बाहर आता है। उधर उधर किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है, काम वाले को, उनको प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद फिर बाहर लोगों को देके उनसे दान लेते हैं। ये पुरानी परंपराएं बनी हुई है। आज भी जितने आश्रम चल रहे हैं ना साधु संतों के, उनके जो भी अनुयायी यजमान है ना, जो भी उनके अनुयायी हैं, उन्होंने साल में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बांधा हुआ है, वो जाके वहां दे के आते, तभी चल रहे हैं। किसी को जानने की बात जरूरत नहीं है मांगने की, बहुत कम लोग हैं जो मांगने जाते हैं। प्रायः सबका ये सिस्टम बना हुआ है, पक्का सिस्टम बना के रखा हुआ है कि हमें अपनी कमाई का इतना हिस्सा भगवान की सेवा में देना है, भगवत प्रचार के अर्थ, कृष्ण भावना अमृत संघ के अर्थ देना है। ये एक नियम बना के रखना चाहिए, अपनी कमाई का एक दान के लिए पहले से निकाल के रखना चाहिए। जैसे छत बनाने से पहले परनाला बनाते हैं, क्योंकि गिरे न चित्र, बरसात में पानी को बहने का रास्ता निकालते हैं ना, रास्ता छोटा होता है लेकिन छत गिरने से बच जाती है। ऐसे जिसने अपनी कमाई में छोटा सा दान का परनाला बनाया है वो सुरक्षित है, ये एक नियम बना के रखना चाहिए। और बहुत सरल सा नियम है, सिर्फ इधर दिमाग को समझाने की जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिमाग में हमारी सोच बदलनी चाहिए। ये हमारा स्थान है, यहां हमको आना है, या हम आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं तो हमारा ऋषि यज्ञ यहां होना चाहिए, क्योंकि यहां शिक्षा ले रहे हैं। पितृ यज्ञ हमारा यहां होना चाहिए, हमारे तो माता पिता तो गुरुजन यही है। तो एक भाव है कि अपने मन से जहां आपकी इच्छा हो, लेकिन ये मर्यादा पहले बनानी चाहिए, नहीं तो क्या है, नहीं तो चोर। भगवद गीता बहुत भारी शब्द लिख रहा है भगवान श्री कृष्ण का, स्टेन एवसर, नहीं तो चोर है। जिसका है, जो दे रहा है उसको धन्यवाद भी नहीं करता है तो चोर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो आप सब लोग बच्चे लोगों को कोई टाकी देता है ना, तो भी आप क्या कहते हैं बच्चे को, बेटा अंकल को थैंक यू बोल के आओ, ऐसे बोलते हो ना। तो ये हमारे संस्कार है ना, थैंक यू बोलना चाहिए, तो भगवान को ही थैंक यू बोलना है, और क्या है। यज्ञ का अर्थ ये है कि भगवान को धन्यवाद करना कि आप सब कुछ हमको दे रहे हैं। ये अभी देवताओं की बात हो रही थी, क्यों देवताओं की बात हो रही थी, क्योंकि भगवद गीता वेदों का सार है, इसलिए वेदों की शिक्षा को भी इसके अंदर रखना है। लेकिन अब कहते हैं कि यह सब करने से सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। बोला आसान तरीका क्या है, बोला एक काम तो सबको करना ही पड़ता है ना। बोला क्या काम, बोला खाने का, खाना तो सबको पड़ता है ना दुनिया में, बगैर खाने के तो कोई नहीं रह सकता है ना। अब आपको आसान से आसान कर्म योग बता रहे हैं भगवान, जो सब कर सकते हैं, काम अपना छोड़ना नहीं, जो काम करते हो करते रहो, बस ये आसान सा कर्म योग। आज का श्लोक यहां तक आ, इसके बाद एक और श्लोक है वहां तक ये चलेगा, ये प्रसंग चलेगा, और इसके बाद वाला श्लोक है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा था ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों ने, भगवद गीता 5000 साल पुरानी है, उसकी आज क्या आवश्यकता है, अथवा आज उसकी क्या उपयोगिता है। प्रभुपाद ने 14वां श्लोक बोला था इस तीसरे अध्याय का, अनाथ भवती भूतानी, सारे आदमी अन्न खाते हैं तब जीते हैं, तो ये 5000 साल पहले भी था और आज भी है, कि इसमें कोई फर्क है। आज भी लोग अन्न खाके ही जीते हैं ना, तो उपयोगिता है कि नहीं। जो उस व्यक्ति आज भी है, बोला ये भगवदगीता का यही श्लोक कोट करके प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि भगवदगीता 5000 साल जो पहले लोगों के काम की थी वो आज भी है। ये श्लोक देख लो, आज भी लोग अन्न खाते हैं तब जीते हैं ना, तो अन्न कैसे पैदा होता है, बरसात से होता है ना। तो ये तो भगवदगीता की आज उतनी उपयोगिता है जितनी वहां पहले जमाने में थी, तो कोई अंतर तो है नहीं इसमें। लेकिन आज का श्लोक जो है ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है, हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान सबके लिए है और भगवान के ही हम सब बच्चे हैं, और सबको भगवान दुखी नहीं देखना चाहता है, सुखी देखना चाहता है। जैसे एक परिवार में जितने बच्चे होते हैं वो कहां, किसने पैदा किए, पिता ने, तो पिता का ही विस्तार है ना। भाई जो बच्चे होते हैं कहां से आए, पिता का विस्तार है, माता पिता का विस्तार है बच्चे, और माता पिता क्या चाहते हैं, बच्चे सुखी हों, यही चाहते हैं ना। सब कुछ लाते माता पिता हैं घर में खिलाने पिलाने के लिए, बच्चा कहां से लाएगा, वो तो चलना भी नहीं आता है उसको, बोलना भी नहीं आता है, खा भी माँ हाथ से खिलाती है तब बच्चा खाता है, पहले तो अपना दूध पिलाती है फिर अन्न खिलाती है, तो माता खिलाती है तब खाता है ना। अब वो बच्चा बड़ा हो तो जो कुछ भी घर में है वो तो बाप का माता पिता का है ना, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है माता पिता को? वो बच्चा पिता का लाया हुआ, मानो पिता केला लाके रखा है घर में, वो उठा के एक केला और छिलका उतार के पिताजी के मुंह में दे तो पिताजी को कैसा अच्छा लगता है? बोलेगा मेरा बेटा मुझे खिला रहा है। ये कहेगा कि नहीं पिताजी? चार आदमी को और भी बुलाएगा, बोला देखो देखो मेरा बेटा मुझे खिला रहा है। लेकिन बेटा कहां से लाया? उसका तो था ही नहीं, बाप का ही है। लेकिन केवल उसने खिलाने के लिए जो इतना प्रयास किया, उसने बाप को प्रसन्न कर दिया। बाप औलाद की खुशी के लिए करता है, ऐसे ही भगवान सबका पिता है और उसने खुशी के लिए इस दुनिया को बनाया है ताकि ये लोग सुखी हों। लेकिन कैसे सुखी हों? जब भगवान को सुखी रखेंगे तब सुखी होंगे। तो भगवान खुश कैसे होते हैं? जब भगवान को हम अर्पण करते हैं। है उसका दिया हुआ, उसका दिया हुआ उसी को अर्पण करना है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा भाव जुड़ जाता है वो भगवान को बहुत, कौन सा भाव? प्रेम का भाव जुड़ जाता है, वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। भगवान कहता है ये देखो मेरे को अर्पण कर रहा है। भगवान को जरूरत नहीं, लेकिन हमारी सुखी रहने के लिए, हमको कुछ रहने के लिए ये करना अति आवश्यक है। तो आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। यज्ञ शिष्टा स्नहि संतो मुच्यन्ते सार्वत्र विषयः भुञ्जन्ते चित्वाघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। एक प्रभु जी कोई पढ़ ले। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकर्मशयः भुञ्जन्ते चित्वाघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। एक माँ आप लोगों में से कोई पढ़। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वतो दशयः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा। पहले लास्ट लाइन को समझ लो, ये पचन्ति आत्मकारणात्। आत्म का मतलब अपने लिए, पचन्ति का मतलब पकाते हैं, और ये एक मतलब जो भी केवल अपने लिए पकाते हैं वो क्या करते हैं? भुंजन्ते, भुंजन्ते का मतलब खाते हैं। अघम पापा, पाप ही खाते हैं। जो केवल अपने लिए पकाते हैं वो तो केवल पाप ही खाते हैं। क्यों पाप खाते? क्योंकि चोर है। आगे बोला चोर है और अब कहा कि वो पाप खाते हैं। प्रश्न का टाइम हो गया है? भुंजन्ते ते अघम पाप। अघ का अर्थ भी पाप है और पाप का अर्थ भी पाप है। अघ का अर्थ प्रभुपाद ने क्या लिखा है देखिए, अघम का मतलब घिनौना पाप, साधा पाप नहीं। जैसे अघासुर है, उनको लास्ट टाइम कहा था ना, वो अघासुर। अघ का मतलब पाप, पापी असुर, घिनौना पाप कर रहा है। इसका अर्थ क्या? ये आखिरी लाइन को पढ़ेंगे तो दुनिया सारी क्या कर रही है रोज? अपने खुशी के लिए पका रही है तो केवल घिनौना पाप खा रही है। बड़ा इसका आसान तरीका, लोग हम अपने लिए थोड़ी पकाते हैं, होटल वालों ने पकाया वहां जाके खाते हैं। पाप वो करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। इसलिए लोगों ने ज्यादातर होटलों में खाना शुरू कर दिया कि हम थोड़ी पकाते हैं भाई। इसका विकल्प निकाला है लोगों ने। उल्टा। हम अपना ही पकाते नहीं है, घर में कहाँ पकाते हैं, हम तो बाहर जाके खा रहे हैं। टाइम से नहीं पूछा तो पैसा वापस दे देंगे, इतना फास्ट डिलीवरी आपके घर में, फोन रखो घर में पहुंच जाएगा। हम अपना भी नहीं पकाते पापड़ी, ये शायद श्लोक का पिछली लाइन केवल उन्होंने पढ़ी है, आखिरी लाइन पढ़ी है, इसलिए घर में पकाना ही बंद कर दिया। तो भगवद गीता को लोग समझ रहे हैं इसका अर्थ हुआ। लोग कहेंगे भाई हम अपने लिए थोड़ी पकाते हैं, भगवद गीता में देखा पहली लाइन नहीं पढ़ी, आखिरी लाइन उनको पसंद आई उन्होंने पढ़ लिया, घर में खाना ही नहीं है, पकाएंगे तो पाप कौन पकाएगा, घर में दूसरे को पकाने दे, हम सिर्फ खाएंगे। नहीं, अब इस घिनौने पाप से कैसे बचा जाए, तब कहते हैं यज्ञ शिष्ट। यज्ञ शिष्ट का मतलब यज्ञ में बचा हुआ, शिष्ट का मतलब शेष, शेष का मतलब जो बचा हुआ है, यज्ञ में अर्पण करने के बाद जो बचता है। अश्नही का मतलब जो खाते हैं, वहां भुंजते लिखा है या अश्नते लिखा है, दोनों दोनों संस्कृत के शब्द, दोनों का अर्थ खाना है, लेकिन दोनों का अर्थ खाना है फिर भी अर्थ अलग है। अश्नति जब आएगा तो कहां आएगा फिर, आपको नवे अध्याय में मिलेगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रेक्षति तदहम अश्नामी। वहां अश्नामी शब्द भवन है तो उसको मैं स्वीकार करता हूं, और ये अश्नाति ये भगवान को देने के बाद प्रसाद अश्नामी हो गया, नहीं तो भुंजते हो जाएगा। अश्नामी और भुंजते दोनों का अर्थ खाना है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, दिन रात का अंतर है दोनों में, एक पाप खाना है और एक प्रसाद खाना है, तो दोनों भुंज और अश्नु दोनों का अर्थ एक ही, देख लो दोनों का अर्थ अंग्रेजी में ईटिंग है, देख लो अंग्रेजी में ईटिंग है कि नहीं, हाँ देखो तो अंग्रेजी में क्या लिखा है, ये ईटिंग है कि हिंदी में क्या, देखो तो एक भोग हो गया एक प्रसाद पाना हो गया, इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में इनका अर्थ हो ही नहीं सकता है, दोनों का ईटिंग लिखेंगे और क्या लिखेंगे। जैसे सरेंडर, शरणागति का अंग्रेजी में सरेंडर लिखेंगे, सरेंडर तो उसको कहते हैं जब डंडा दिखाए तो हाथ ऊपर करे, तो यहां डंडा तो भगवान नहीं दिखा रहा है, तो इसका अर्थ हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको असली शब्द को समझेंगे तब इसमें रस आएगा। यज्ञ शिष्ट जो यज्ञ में बचेगा, अश्नंती उसको जो पाते हैं प्रसाद के रूप में, उसको क्या होता है, मुच्यंते मुक्त हो जाते हैं। मुच का मतलब खुलना, कोई आदमी बंधा हुआ है खुल जाए, मुच्यंते मतलब खोल दो, किसी आदमी के हाथ पांव बंधे हुए हैं कर्मों से, कर्मों के तीन गुणों से बंधे हुए कर्मों के हाथ पांव किसके हैं, उसको बोलते हैं बंधा हुआ, उसको खोलने को बोलते हैं मुच्यंते। मुच्यंते सर्व सारे किल्बिशः, किल्बिश का मतलब पाप। तो अब करना क्या चाहिए, करना यह चाहिए सबको खाना तो पड़ेगा, भोजन तो खाना ही पड़ेगा। अब उस भोजन को जब लेने जाओ बाजार से, तब अभी हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, हमारे लिए ला रहे हैं, ये सौदा हमारा आ रहा है। अब दिमाग में सिर्फ इतना परिवर्तन लाओ, ये हम भगवान के भोग अर्पण करने के लिए ला रहे हैं, पहले कॉन्शियसनेस को या चेंज करो। ये बहुत अच्छे आज अंगूर मार्केट में है, आज भगवान को अंगूर का भोग लगाएंगे और बचा हुआ शेष प्रसाद परिवार के साथ पाएंगे, तो यज्ञ हो गया। अंगूर अच्छे हैं हम खाएंगे तो पाप हो गया, और घिनौना पाप हो गया, बस सोच में अंतर है। तो जहां लेने जाते हैं वहां से दिमाग को सेट करना पड़ेगा, फिर पकाते हैं तब भगवान के लिए पका रहे हैं, भगवान को प्रसाद अर्पण हुआ, भोग भगवान को अर्पण हुआ, हमारे लिए प्रसाद बन के वापस आ गया। बस एक ये काम करने से कर्मयोग शुरू हो गया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, ये जीभा सब इंद्रियों में बहुत बहुत क्या कहेंगे इसको, टन्नू के हिसाब से इसने माल खाया है, तन्नू के हिसाब से घी चीनी क्या क्या नहीं खाया है, लेकिन दो मिनट के बाद इसके ऊपर निशान भी नहीं देखा है। जा कहां गया पता नहीं, दोबारा लाओ। इसने भिखारी बना रखा है हमको इस जबान ने, सुबह सुबह से शाम तक भागा दौड़ी यही करा रही। कोरी बार जीवा जब बहुत, तीन इंद्रियां हैं बीच में, तीनों बहुत प्रबल है दुनिया में बंधन का कारण। मिड लाइन में जो तीन है, जीभा पेट और जन इंद्री, तीन इन्होंने दुनिया में सबको भटका के रखा है। पेट के लिए तो घर छोड़ के आए हैं ना, क्यों पूछेंगे क्यों घर छोड़ा, बोला पेट के लिए, यही कहेंगे ना। और जबान के लिए पेट को क्या चाहिए इसको जरूरत पर किसी को मालूम नहीं, जबान को क्या चाहिए इसके ऊपर सब सोच रहे हैं। इसलिए तीनों को ठीक करने के लिए पहले जिसने जीभा को ठीक किया बाकी दोनों अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसके भावार्थ में प्रभुपाद ने कहीं लिखा है, ये जो हम श्लोक पढ़ते हैं भोजन से पहले, शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिया तोय काल जीवे फले विश्व सागरे, जीव विफल विश्व सागर है, तो विश्व का सागर है। इसको कभी कहते हैं है तो छोटी लेकिन है विश्व की, इसके विश्व कहते हैं पॉइजन को, जहर को कहते हैं। और सबसे ज्यादा पॉइजन कब उगलती है, जब बोलती है। तो कर्म योग आसानी से हर घर में शुरू हो सकता है, जब पकाते हैं तो यज्ञ के लिए पकाए, यज्ञ के लिए पकाए मतलब भगवान विष्णु के लिए पकाए। और प्रभुपाद ने यज्ञ को और आसान कर दिया कि कलयुग का कौन सा यज्ञ संभव है, यज्ञ है संकीर्तन स्वमेध दशा, जो बुद्धिमान है वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे। संकीर्तन यज्ञ का मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और संत, एक शब्द संत है इस श्लोक में, अश्नंती के बाद है संतो, वहां है अघ और यहां है संत, वहां पापी है और यहां संत है। और संत किसको कहा है, प्रभुपाद ने संत शब्द को ब्रह्मा संहिता के एक श्लोक से ये संत शब्द को समझाया है, प्रेमंजन चरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय चोवलोकयन्ति। संत कौन है, जो अपने हृदय में रोज भगवान श्याम सुंदर को देखता है। कैसे देखता है, जिसकी आंखों में भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम है। संत की परिभाषा प्रभुपाद ने इसके भावार्थ में दिया है। इसका मतलब क्या है, वो जो चीज भी अच्छी देखते हैं, फूल बहुत अच्छा है ये तो भगवान के लिए ले जाना चाहिए, माला बना के भगवान को अर्पण करनी चाहिए, ये हो गया संत। ये फूल अच्छा है हमको हमारे किसी प्रेमी को देना चाहिए, ये हो गया अघम पापा, बस अंतर इतना ही है। ये फल बहुत अच्छा है भगवान को भोगना लगना चाहिए, संत हो गया। संत होने का लिए सरल भाव है कि हर जगह हर समय भगवान कृष्ण भावना भगवत भावना हृदय में होनी चाहिए, उसको संत बोलते हैं। तो संत यज्ञ करते हैं, कैसा यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। और संकीर्तन यज्ञ करने में न घी की जरूरत है, न आग की जरूरत है, न ब्राह्मण के मंत्र पढ़ने की जरूरत है, हर व्यक्ति अपने आप संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के लोग साथ बैठकर 10 मिनट कीर्तन करो, तब तक भोजन जो बना है भगवान के आगे घर में मंदिर भगवान का बनाओ, चित्रपट रख दो अगर पूजा करने में नहीं अभी तक समर्थ है तो, और वहां थाली रख के बैठ के 10 मिनट कीर्तन कर लो और फिर लाके प्रसाद सब पाओ, ये यज्ञ हो गया और सब पापों से मुक्त हो गए, बहुत सरल और सबको करना है। क्या भोग लगाना चाहिए, फिर ये प्रश्न उठेगा, भगवान कुछ भी खा सकते हैं, भगवान को ये तो समय नहीं है, लेकिन भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं, किसी का भी खा सकते हैं, उनको सबका पकाने की हिम्मत, जैसे भगवान को तो 56 भोग लोग लेता है, हम 56 भोग खाएंगे तो आईसीयू में पड़े होंगे, हम तो 56 नहीं खा सकते हैं ना। तो भगवान को रोज 56 भोग लगते हैं, शुद्ध घी में बनता है, लेकिन हम तो हमारे तो दिल की नलियां बंद हो जाएंगी, इतना घी खाएंगे तो हमारी बहुत परेशानी है। तो भगवान क्या खाते हैं वो मत देखो, भगवान क्या मांगते हैं वो देखो। वैसे यज्ञ के लिए हर व्यक्ति के लिए अलग यज्ञ बताया है वेदों में, मांसाहारियों के लिए मांस का यज्ञ भी बताया है, लेकिन भगवत गीता में हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा कि हमको शुद्ध, वैसे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम इसको मारना भी पाप है, सब्जी खाना भी पाप है, क्योंकि सब्जी भी जीवित है ना, लेकिन भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसाद होता है तभी पाप से मुक्त होते हैं। लोग कभी कहते हैं कि आप सब्जियां खा रहे हैं ये भी तो सजीव है, ये भी पाप है। हाँ ये पाप है, वेजिटेरियन हम हैं ये बात नहीं है, वो मंकी जरा सा वेजिटेरियन पाउपाजी उससे, हम तो कृष्णटेरियन है, हम तो कृष्ण प्रसाद खाते हैं। तो क्या खाना चाहिए जो भगवान मांगे, जैसे हम आपको कहें कि हमको पानी पिलाओ, नहीं पानी नहीं, आप इतनी दूर से आए आपको पानी पिलाएंगे हम, आपके लिए शुद्ध घी का गिलास है आप ये पीजिए। अरे भाई मुझे पानी चाहिए, 450 रुपये किलो का है, आपको पूरे 300 मिलीलीटर दे रहे हैं आप पीजिए। भाई नहीं पीना है मुझे पानी चाहिए। नहीं आपको तो ये पीना पड़ेगा प्रभु जी, तो अब आपको पानी दे, पानी तो आम आदमी को देते हैं, अब बताइए मेरा क्या हाल होगा। तो भगवान कहता है मेरे को जो दो वही दो ना, क्योंकि आपको प्रसाद के रूप में फिर उसको खाना भी है। तो सिंपल सा ये श्लोक, इसके भावार्थ को ठीक तरह देख लेना, उसके अंदर यज्ञ को प्रभुपाद ने उसमें पता है क्या बोला, यज्ञ किसको बोला, सर्वणम कीर्तनम, नौ प्रकार का यज्ञ बोला है, नवदा भक्ति को नौ यज्ञ बोले हैं प्रभुपाद ने। यज्ञ शिष्ट संकीर्तन यज्ञ हो गया, संकीर्तन श्रवण कीर्तन ये सब यज्ञ के अंदर आ गए, और ये श्रवण यज्ञ चौथे अध्याय में आएगा भी। श्रोतादिन्द्रियान्य संयम अग्निशु जोवते, वहां 14 यज्ञों का वर्णन है। तो यज्ञ में भोजन को अर्पण करके, मतलब भगवान श्री कृष्ण को पहले पका हुआ भोजन अर्पण करके, बचे हुए को जो खाता है वो संत है, वो संत है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बाकी जो अपनी अपने मन माने से अपने इंद्र तृप्ति के लिए पकाते हैं वो घिनौना पाप खा रहे हैं, बहुत भारी पाप रोज खा रहे हैं। ये आज के इस श्लोक का अर्थ है। अब आपके लिए संदेश ये है कि पाप खाने से बचो, प्रसाद खाओ और संत बन जाओ। हरे कृष्ण। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? एक बज गया, ठीक है, एक घंटे का था। हाँ प्रभु जी, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं होगा। कृष्ण को कुछ भी अर्पण किया जा सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम खाएंगे तो हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। वही मैं कथा बतानी थी, किसी कोई अच्छे काम न करने वाला भगवान को कुछ अर्पण करने आया, तो पहले तो पुजारी ने उसको पहचाना, बोला ये तो भाई वेश्या आया थी, इसका कैसे लें। तो रात को भगवान ने उसको थप्पड़ मार के उठाया, बोला कैसे भी है वो मेरे को अर्पण कर दे, तुम क्यों मना करते हो, ले लिया। लेकिन दूसरे दिन भोजन खाया और भंडारा, तब महाराज परेशान हुआ, तो भगवान रात को फिर थप्पड़ मारा, बोला मैं खा सकता हूं, तुम थोड़ी खा सकते हो, तुमने क्यों खाया, मैं खा सकता हूं किसी का, तुम थोड़ी खा सकते हो, तुम उतना ही खाओ जो मैं तेरे को कहता हूं। तो ऐसे भगवान को अर्पण, भगवान तो ले लेंगे, लेकिन हम खाएंगे तो हमारा काम ठीक नहीं हो। तो हमको क्या, इसको प्रभुपाद ने एक अच्छी जगह से बहुत अच्छा समझाया है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपकी बीमारी देखकर कहेगा ये आपको खाना चाहिए। अब आप डॉक्टर कहेंगे नहीं नहीं हम, आप कहते हैं ये नहीं खाएंगे, हमारी जो इच्छा है वो खाएंगे, तो बीमारी कैसे जाएगी कभी। तो ऐसे ही हमारे को भौतिक रोग की एक बीमारी है, जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार में पड़े हैं, इसके लिए जो डॉक्टर है उसने हमको कहा है कि आपको शुद्ध, बहुत शुद्ध शाकाहारी जिसके अंदर लहसुन प्याज भी नहीं है वो खाना चाहिए। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हमारी बीमारी ऐसी है उसके अंदर ये खाने से हमारी बीमारी बढ़ेगी, रोग हमारा नाश नहीं होगा। तो अच्छा पेशेंट वो है वो डॉक्टर की आज्ञा का मान पालन करे। जो नहीं करेगा डॉक्टर की आज्ञा, बहुत से लोग हैं डॉक्टर कहते हैं फिर भी खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, इसमें क्या होता है? डॉक्टर को क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर को परेशानी होगी क्या? डॉक्टर को तो फायदा ही फायदा है, फिर आएगा दोबारा। लेकिन पेशेंट को बुद्धिमान होना चाहिए। तब देख लीजिए ये तीनों चारों चीजें जो है, खाना सोना, ये सब भगवान ने, चारों चीजें जो पशु वाली हैं, उनको भगवान ने अपनी भक्ति में कैसे परिवर्तन करना है, पहले भोजन को आर, फिर भय को, नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को कोई भय नहीं करना चाहिए, मैं उसकी रक्षा करता हूं, फिर काम को, धर्मार्थ कामो अस्मी भरत सभा प्रजन प्रजन चास्मी कामो, काम भी धर्म के अंतर्गत जो है वो मेरा स्वरूप है। तो भगवान ने आहार निद्रा भय मैथुन चारों को भक्ति में परिवर्तन करने का रास्ता बताया। नहीं तो ये चारों पशु के, तो उनमें से पहले आज आहार के ऊपर हमने चर्चा की है। सातवें अध्याय में काम आएगा कि काम कैसे भगवान की सेवा में लगता है, और फिर समाधि आदि आएगी। वैसे सोने के लिए ज्यादा कहीं लिखा नहीं है, इसलिए चेतना महाप्रभु ने एक साल तक सोना बंद ही कर दिया था, रात को कीर्तन किया करते थे, और हमारे आचार्य डेढ़ दो घंटे से ज्यादा सोते नहीं थे। तो ये सोने को कृष्ण भावना में लगाने का अर्थ है थोड़ा कम करना, बाकी चीजों को कृष्ण भावना में कैसे लगा जाता है उसका ये रास्ता है। तो भगवान को कुछ भी अर्पण किया जा सकता है, लेकिन हमको वही खाना चाहिए जो हमारे को हमारा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। हाँ बेटा, प्रश्न बहुत अच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद के अलावा किसी देवी देवता का प्रसाद हमको दिया जाए तो क्या करना चाहिए। अब मेरा प्रश्न यह है कि देवी देवता को प्रसाद अर्पण क्यों किया है, उसने उससे ये पूछना पहले। ये प्रश्न आप उससे पूछने की हिम्मत करते हो, पहले पूछना, क्योंकि आप अगर ये प्रश्न उससे पूछेगा तो वो कहेगा कि हमने अपने इच्छा पूर्ति के लिए ये काम किया है, तो तेरी इच्छा पूर्ति का प्रसाद तुम मेरे को क्यों दे रहे हैं? सीधी से प्रश्न, एक बुद्धिमानी का प्रश्न ये है कि आपने क्यों अर्पण किया उसको, ये तो पूछो ना। लोग बीमार घर में बच्चा है उसके ऊपर बकरे को ऐसे घोल के और फिर हमको कहते हैं साधु को ये प्रसाद आप ले लो, उस प्रसाद को ले क्या? वो उसकी बीमारी हमको देना चाहते हैं, हम क्यों ले भाई? ऐसा बहुत सा प्रसाद होता है जो उनकी इच्छा का हमको दे रहे। वो एक आदमी कहे कि मैं भगवान हनुमान, मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने गया था, क्यों? बोला भगवान हनुमान भगवान राम के बड़े भक्त है, मैं तो राम को जानता नहीं हूं, मैं हनुमान के आगे रखता हूं, कहता हूं राम को अर्पण कर देना, तो राम जी को उन्होंने अर्पण किया है, मैं तो जानता नहीं हूं, उसको बोलो लाओ मैं तेरा खाता हूं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसने समझा है कि राम का प्रसाद राम के भक्त के द्वारा ही राम को अर्पण किया जाएगा। जैसे हमारे को मालूम है कि गुरु के द्वारा ही प्रसाद भगवान तक जाएगा, तो उसके खाने में कोई आपत्ति नहीं, क्यों? सिद्धांत हो गया, सिद्धांत है कि उसके माध्यम से गया होगा। ये बहुत सूक्ष्म तत्व है, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। प्रचारक को प्रचार आप कहीं कर रहे हैं और कहीं प्रसाद कोई दे रहा है तो उसको ले लेने में कोई आपत्ति नहीं, आप उधर उसको ना करेंगे तो आपका प्रचार बंद हो गया, समझ लो। ले जाने के बाद जहां आपकी इच्छा हो उसको ठीक तरह से उपयोग में ला लो, नहीं पाना है तो मत पाओ, लेकिन लोगों को उद्विघन मत करो। यस्मात् नो दो एवं उद्वेगते, उद्विघन करने का मतलब दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये भी बुद्धिमानी हम में होनी चाहिए, नहीं नहीं हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, तुम्हारे देव देवता का प्रसाद है, तो हम कहेंगे तो हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, तुम जाओ, इसका मतलब प्रचार खत्म हो गया ना। और या तो इतना आप में हो कि भाई क्यों किया था आपने देवी देवता को, क्या काय के लिए किया था, देवती देवता समझ के किया था। बहुत 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 सूक्ष्म प्रश्न, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भागवत में प्रभुपाद ने लिखा है कि देवी को जब भी प्रसाद अर्पण किया जाता है, वो तो वैष्णवी है, वो तो भगवान को अर्पण करती है, इसलिए उसको तो मावा प्रसाद अर्पण करती है, और जो मांस आदि प्रसाद है वो अपने भूत पिशाचों को देती है। देवी अपने आप नहीं खाएगी, वो तो भगवान की पहले अर्पण करेगी फिर लेगी, ऐसे भागवत में परपट लिखा है। तो ये बहुत सूक्ष्म तत्व है, इनको समझना इतना आसान नहीं। अब शंभू परम वैष्णव है, जब परम वैष्णव है तो आप अगर कोई शंभू को कुछ देगा तो अपने आप क्यों खाएगा? तो परम वैष्णव जब हम छोटे से तुच्छ वैष्णव है ही नहीं, वो भी भगवान को अर्पण करेंगे, क्या वो भगवान को अर्पण नहीं करेगा क्या? लेकिन देने वाले ने क्यों अर्पण किया इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। तो प्राय 99.9% कांक्षते कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते, ये देवता, देवता की पूजा करने वाला अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए देता है, इसलिए हम उसके इच्छा के भागी न बने तो अच्छा। ये सिद्धांत है। लेकिन देवता को प्रणाम करना, उसका आदर करना, ये हमारा भी धर्म है, ये हमारा धर्म है। महाप्रभु जहां जहां से गए हैं सब ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने गए, जिस रूट से गए सब शिवालयों में गए हैं। सिद्धांत समझना ठीक है, देवता को देवता समझना, भगवान के सेवक हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, देवता को भगवान समझना अपराध हो गया। तो इस सिद्धांत को ठीक तरह समझना चाहिए। प्रसाद, तो उस प्रसाद देवता को क्यों अर्पण किया ये पहले समझना चाहिए, और सेफ्टी ये है कि लेके उसको कहीं ठीक तरह से उसको दुरुपयोग भी नहीं, उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। अपमान न आदमी का करना ना चाहिए, ना देवता के प्रसाद का करना चाहिए, सर के ऊपर ऐसे लगा देना चाहिए और उसके बाद ठीक तरह से उसका प्रवाह करना, कैसे भी करना है करना, लेकिन उसकी वजह से उसकी वजह से आप प्रचार को खराब नहीं करना चाहिए, ये भी आवश्यकता है। अंतर जैसे घर के अंदर बच्चे को आप रोक सकते हैं कि तुम ऐसे काम मत करो, लेकिन बाजार में तो नहीं रोक सकते ना। तो अपने भक्त जो है दीक्षित है उनको समझाया जा सकता है, लेकिन पब्लिक में ये बात नहीं की जा सकती। तो कहां कहना चाहिए कहां नहीं कहना चाहिए ये भी मर्यादा है। भाई अपने बेटे को अपनी पत्नी को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये मत करो, लेकिन बाहर बाजार में कहने के लिए हमें इसका अधिकार नहीं। किसको अधिकार है ये देखना चाहिए। और कोई प्रश्न? जी क्या श्लोक पढ़िए, तो एक शब्द पढ़िए, टाइम तो नहीं है इसका आज कम करने, क्या है सातवें का 21, सात का 21 क्या है याद होना चाहिए। तस्याम सिद्धांतम एव विद्यामियम, जो जो जिस देवता की पूजा करना चाहता है उसको वो श्रद्धा मैं देता हूँ जिसके द्वारा उसकी वो पूजा करता है, और जो देवता आपको फल देता है वो भी उसको मैं कहता हूँ तब देता है। ये दो श्लोक ऐसे हैं। देवता की पूजा करने वाला पहले तो श्रद्धा के ऊपर, सबकी पूजा श्रद्धा से होती है, तो श्रद्धा कौन देता है? भगवान कहते हैं श्रद्धा मैं उसको देता हूँ, क्योंकि वो उसकी पूजा करना चाहता है इसलिए मैं उसको वो श्रद्धा देता हूँ। फिर उस श्रद्धा से वो पूजा करता है तो देवता प्रसन्न होता है, तो देवता मुझसे पूछता है क्या मांग रहा है, तो इसको दे दो, तो मैं उसको वो दे देता हूँ। फिर इसके बाद वाले श्लोक में क्या लिखा है? स्वतंत्र का यहाँ अर्थ ये है, इच्छा करने की हमको स्वतंत्रता है, इच्छा करने की स्वतंत्रता सबको भगवान ने दी हुई है कि हम मंदिर में जाएं कि शराब खाने में जाएं, ये इच्छा करना हमारे हाथ में है। इच्छा की स्वतंत्रता भगवान ने सबको दी है, अब क्या इच्छा करनी चाहिए ये हमारे ऊपर निर्भर है। अनादिकाल से भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते आ रहे हैं, तो केवल इच्छा की स्वतंत्रता वो भी मानव जन्म में हमारे को है और किसी को नहीं। कौन सी इच्छा करनी चाहिए ये हमको शास्त्रों से और सदगुरु से सीखना चाहिए प्रमाणिक रूप से। नहीं, भगवान ने नहीं, आपने गलत काम के लिए भगवान से मांगा, इसको ऐसे बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि मेरे को शराब के दुकान का लेसन दो, गवर्नमेंट आपके घर में नहीं आई कि तुम लेसन दो, आपने मांगा ना, आपने एप्लीकेशन दी कि मेरे को ये लेसन दो ना, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ सैंक्शन किया, आपने मांगा था, गवर्नमेंट ने तो आपके घर में आके नहीं दिया था। ऐसे हम भगवान से मांगते हैं कोई चीज, ये हमारी इच्छा हुई, भगवान सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, अनुमंता, इसलिए बोलते हैं अनुमंता। कोई भी हम कर्म करते हैं उसके तीन कर्ता हैं। पहला कर्ता इच्छा करने वाला जीव, दूसरा कर्ता अनुमति देने वाला भगवान, और तीसरा कर्ता प्रकृति, जो ये शरीर और इंद्रियां देते जिसके द्वारा ये काम होता है। तो तीन है, इन तीनों में इच्छा करने वाला जवाबदार है, दायित्व इच्छा करने वाले के ऊपर है, न प्रकृति के ऊपर है न अनुमति देने वाले। जैसे मैं गवर्नमेंट से परमिशन लूं कि मेरे को कारखाना लगा रहा है, गवर्नमेंट कहते अप्रूव्ड, अब घाटा पड़ा तो उसका जवाब गवर्नमेंट है कि मैं हूं, क्योंकि मैंने मांगी थी ना परमिशन। तो इच्छा करने की स्वतंत्रता हमारे, कर्म की इच्छा जीव करता है, भगवान केवल अनुमति देता है, और प्रकृति केवल उपकरण देती है जिसके द्वारा वो कर्म किया जाए। तो ये तीन करता है, ये समझ में आना चाहिए, ये सूक्ष्म बहुत जो ठीक तरह शास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए है। तीनों में से मुख्य करता इच्छा करने वाला है। हरे कृष्ण। शुभोपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। एक घंटा 7 मिनट हो गए। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। इच्छा करने की हमारी आजादी हमको है।